पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी और न्यू साउथ वेल्स में भूकंप के झटके। भारत में दैनिक कोरोना मामलों में दर्ज हुआ 3% का उछाल। और ऑस्ट्रेलिया महिला फुटबॉल टीम को मिली आयरलैंड के हाथों करारी शिकस्त। और अब खबरें विस्तार से। विक्टोरिया की राज्य आपातकालीन सेवाओं ने सूचित किया है कि विक्टोरिया के शहर मैंसफील्ड में 5.8 रिक्टर पैमाने का भूकंप दर्ज किया गया है। इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। चश्मदीद गवाहों ने SBS को बताया है कि भूकंप के झटके लगभग 30 सेकंड तक महसूस किए गए थे। मूल भूकंप के बाद और भी कई छोटे झटकों की लहरें महसूस की गई थीं। ये झटके विक्टोरिया समेत ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी और न्यू साउथ वेल्स के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। खबर मिली है कि कुछ बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वॉशिंगटन DC से बयान देते हुए कहा है कि वे लगातार ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से संपर्क में हैं और जहां भी जरूरत होगी फेडरल सरकार मदद देगी।
But of course, the federal government stands by through Emergency Management Australia to provide whatever assistance is needed, whether from the ADF or others. But at this stage, we have had no reports of serious injuries or worse, and that is very good news.
विक्टोरिया में कंस्ट्रक्शन कर्मियों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों को चेताया जा रहा है कि वे घर पर ही रहें। मेलबर्न में तीसरे दिन कंस्ट्रक्शन कर्मियों के लिए अनिवार्य टीकाकरण की शर्त के खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहे थे। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने हिंसक विरोधों की भर्त्सना की है। मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसक भीड़ के चलते शहर और वेस्टगेट ब्रिज बंद हो गए थे। विक्टोरिया की पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। प्रीमियर एंड्रूज का कहना है कि विक्टोरिया की पुलिस गलत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी।
The ugly scenes that we saw yesterday are not only appalling, they're unlawful. Victoria Police will take action against those who did the wrong thing yesterday. There were others who were not from the building industry. They're not there to protest, they're there for a fight. And what we saw yesterday is an insult to the vast, vast majority of tradies or people in the building industry. They do not reflect, and they should not be seen to reflect, an entire industry. That would be unfair. That would be wrong.
यह तब आता है जब मेलबर्न ब्यूनोस एरिस के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा तालाबंदी झेलने वाला शहर बन गया है। 6 लॉकडाउन में शहर कुल 234 दिनों के लिए बंद रहा है। विक्टोरिया ने आज 60,000 से अधिक कोरोना जांचों में से 628 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। विक्टोरिया के स्वास्थ्य विभाग ने 3 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की हैं। ग्लोबल अलायंस ऑन एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस की अध्यक्ष जेन हैल्टन ने 9 नेटवर्क को बताया है कि उन्हें भय है कि कंस्ट्रक्शन कर्मियों द्वारा किए गए 2 दिन के विरोध प्रदर्शनों में से महामारी की स्थिति और चिंताजनक हो सकती है।
You see how close all these people are together, how long they were together yesterday. So I'm very, very worried about this. It's terrible, isn't it? And I do feel for Melburnians today. Seeing people without masks, they've probably travelled in on public transport. These are the kinds of circumstances that have led to Daniel Andrews putting mandates on. And so the real risk now is we get COVID spreading more broadly than it already is in Victoria. And that would be terrible.
न्यू साउथ वेल्स ने आज 1,035 स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में 5 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी दर्ज की गई है, जिनमें 2 लोग 50 के दशक में, एक 60 के दशक में, एक 70 के और एक व्यक्ति 80 के दशक में थे। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लिन ने बताया है कि न्यू साउथ वेल्स में 83% पात्र जनता को कोरोना टीके की पहली खुराक और 54.2% योग्य जनता को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। सुश्री बेरेजिक्लिन ने साथ यह भी बताया कि 12 से 15 साल के बच्चे बड़ी संख्या में टीका प्राप्त करने के लिए आगे आ रहे हैं।
Now, in terms of 12 to 15-year-old children, as we know, they were recently invited to come and get vaccinated. Pleasingly, a quarter of that age cohort, so 25% of 12 to 15-year-olds, have already received the vaccine in New South Wales. An outstanding result, given school isn't commencing till the 25th of October. So it demonstrates how keen families are to make sure everybody is staying safe.
इस समय, New South Wales में 1,232 मामले अस्पताल में दर्ज हैं, जिनमें से 242 मामले वेंटिलेटर पर हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के साथ साथ कई कूटनीतिक बैठकों से भरा दिन खत्म कर अब वॉशिंगटन डीसी का रुख कर लिया है। श्री मॉरिसन ने यूरोपियाई संघ के साथ मुलाकात कर फ्रांस से 90 बिलियन डॉलर की नई सबमरीन बनाने के करार के रद्द होने के बाद आई कड़वाहट को कम करने की कोशिश की है। श्री मॉरिसन लगातार कहते रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हित में न्यूक्लियर चलित सबमरीन बनाना ही है। उन्होंने ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के मध्य हुई नई साझेदारी का बचाव करते हुए कहा है कि प्रशांत महासागर के इलाके में शांति बनाए रखने के लिए यूरोपियाई देशों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।
विद आवर यूरोपियन पार्टनर्स इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस एंड टेक देम थ्रू द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स दैट वी हैव मेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज इंटरेस्ट्स ओवर द कोर्स ऑफ द पास्ट वीक। ऑस्ट्रेलिया विल ऑलवेज pursue our national sovereign interests. So it has been, I think, a very important day.
विश्व भर में प्रसिद्ध नए साल पर होने वाली सिडनी की आतिशबाजी इस साल भी रद्द कर दी गई है। शहर तो आने वाले हफ्तों में खुल रहा है, पर फिलहाल इस उत्सव पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आधी रात को होने वाली आतिशबाजी इस साल भी होगी, पर इसके लिए कितने लोग एकत्र हो सकेंगे इस पर निर्णय आना अब भी रहता है। सिटी ऑफ सिडनी से एक प्रवक्ता ने बताया कि शाम करीब 9 बजे होने वाली बड़ी आतिशबाजी को कोरोना महामारी के मद्देनजर जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशों के चलते स्थगित कर दिया गया है। उधर न्यू साउथ वेल्स के ट्रेन ड्राइवरों का कहना है कि वे औद्योगिक मुहिम के तहत भत्ते और काम करने की स्थितियों को लेकर हड़ताल करेंगे। यह हड़ताल मंगलवार 5 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 1 बजे तक की जाएगी। इसी के साथ बुधवार को ओवरटाइम पर बैन, गुरुवार को वर्क टू रूल और शनिवार को ट्रेनों की गति धीमी कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर चलाया जाएगा। रेल, ट्रैम एंड बस एसोसिएशन का कहना है कि वे सरकार के साथ एक नए अनुबंध तय करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बात जस की तस खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई नई साझेदारी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह वैश्विक साझेदारों के हित में लिया गया कदम है। श्री बाइडेन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया से निकटतम और भरोसेमंद दोस्त उनके देश का और कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मॉरिसन और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात न्यूयॉर्क में की।
The United States has no closer or more reliable ally than Australia. The United States and Australia are working in lockstep on the challenges ending COVID, addressing the climate crisis, defending democracy, shaping the rules of the world for the 21st century.
और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,964 नए मामले सामने आए हैं और 383 लोगों की मौत दर्ज की गई है। देश में रिकवरी रेट 97.77% का है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.08% दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 99 दिनों में से 3% के नीचे बना हुआ है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में 75,97,529 टीकों की खुराकें वितरित की गई हैं। भारत में अब तक कुल 82,65,15,754 कोरोना टीके बांटे जा चुके हैं। अमेरिका में भारतीय प्रवासी समूह इंडियास्पोरा के संस्थापक एमआर रंगास्वामी ने भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत मजबूत स्थिति में है और भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी गति पकड़ी है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत स्थिति में अमेरिका आ रहे हैं। उनके अनुसार मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। कंपनियां इसे न केवल एक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं, बल्कि बड़ी संख्या में भारतीय स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न में बदल रहे हैं। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनकी मूल्य $1 अरब से अधिक हो जाती है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.40 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई महिला फुटबॉल टीम के कोच टॉनी गुस्तावसन का कहना है कि वे निराश हैं कि मैटिल्डास सैम कर के 100वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में जीत नहीं दर्ज कर सके। उनका कहना है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जीत के लिए जुझारू भी थे और ललायत भी, और इसी कारण ऑस्ट्रेलियाई पक्ष को 3-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा है। नौजवान खिलाड़ी मैरी फाउलर ने खेल के पहले हाफ में ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 गोल दागे। उधर आयरिश पक्ष 7 खेलों में नाकाम होने के बाद दबाव में था, लेकिन घर में खेला जा रहा मैच नई ऊर्जा के साथ जीत कर दिखाया है। और अंत में एक नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी, यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल धूप ही धूप है, अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में भी कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, यहां का अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल धूप ही धूप छाई रहेगी, यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में भी कल तेज धूप के आसार है, यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में भी कल धूप ही धूप है, अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बिजली के साथ बारिश की संभावना है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।